الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاتم و سلاما علیک یا رسول اللہ قرآن مجید فرقان حمید کی جن آیات بینات کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا اللہ رب العالمین جل جلالہ و امن والہ ارشاد فرما رہا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ اور ہم نے ان پر طوفان بھیجا وَالْجَرَادَ اور ٹڈی دل بادلوں کی مانند وَالْقُمَّلَ اور جوئیں وَالضَّفَادِعَ اور مینڈک وَدَّمَ آیَاتٍ مفصلات اور یہ الگ الگ نشانیاں تھیں فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ انہوں نے تکبر کیا اور یہی قوم مجرمین میں سے تھی یہ ان آیات بینات کا ترجمہ ہے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام یا کم و بیش اس دنیا میں بھیجے اپنے اپنے ادوار میں وہ تشریف لائے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا ایک خدا کے سامنے جھکنے کا حکم دیا اور اسی کی عبادت اسی کی بندگی کرنے کا حکم دیا تبلیغ کرتے رہے بتاتے رہے سمجھاتے رہے जिन्होंने माना कबूल किया वो मुसलमान कहलाए, जिन्होंने इनकार कर दिया अल्लाह तबारक व ताला ने उन पर अपना अजाब नाजिल किया। और अल्लाह तबारक व ताला का ये अजाब मुख्तलिफ सूरतों में उन पर नाजिल हुआ, जैसा कि इस आयत बयनात में जिक्र है, तूफान की सूरत में, मच्छरों की सूरत में, मेंढक की सूरत में, जुओं की शक्ल में, खून की शक्ल में, और इसी तरह दीगर सूरतों में वो अजाब नाजिल हुआ, पत्थरों की शक्ल में भी नाजिल हुआ। और जब अल्लाह तबारक व ताला का अजाब नाजिल हुआ तो वो कौमें तबाह बर्बाद हो गई, नेस्त तो नाबूद हो गई, नसीया मनसिया हो गई, नामो निशान इस दुनिया से मिट गया, पता भी नहीं चला कि यहां कोई कौम आबाद थी। जाहिर है कि अल्लाह तबारक व ताला के गजब से बचाने वाला कोई नहीं, उसकी बारगाह से जिसे आजादी मिल जाए उसे पूरी कायनात में पकड़ने वाला कोई नहीं, और जिसको वो पकड़ ले उसका गजब उसका अजाम उसे पूरी कायनात में छुड़ाने वाला कोई नहीं। कुरान कहता है इन बत्श रब्बे का लशदीद, तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है, उससे कोई छुड़ा नहीं सकता। अल्लाह तबारक व ताला ने इन तमाम आजाब जो नाजिल किए इस आयत में जिक्र किया, और कुरान मजीद फुरकान हमीद में मुतअद्दिद मकामात पर मुख्तलिफ अकवाम उम्मतें जो हुजूर अलैहिस्सलाम से पहले गुजर चुकी हैं अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की, उनका जिक्र किया, जो जो गुनाह उन्होंने किए, जो गलतियां की उनका जिक्र किया, जिनकी वजह से उन पर अजाब नाजिल हुआ उनका जिक्र किया, उनकी सरकशी, उनका तकब्बुर, उनका गुरूर, उनकी नखवत, इन तमाम चीजों का जिक्र किया। और अल्लाह फरमाता है ये कुरान ये तुम्हें महज किस्से कहानियां नहीं सुनाता, ये तुम्हें सच्ची सच्ची खबरें देता है। कुरान सच्ची खबरें देता है, जो पहले अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम गुजर चुके, उनकी उम्मतें गुजर चुकी, उनकी बिल्कुल सही दुरुस्त सच्ची खबरें ये कुरान तुम्हें दे रहा। क्यों? ताकि हम उन वाकयात को सुने, उनको पढ़ें और इबरत हासिल करें, अपने आमाल को दुरुस्त करें। अल्लाह तबारक व ताला ने बता दिया, देखो जिन्होंने सरकशी की, जिन्होंने तकब्बुर किया, हमारा अजाब नाजिल हुआ और आज उनका नामो निशान नहीं। वो कौमें कहां हैं? वो सरकश, वो जमीन पर फितना फसाद करने वाले खत्म हो गए। अल्लाह तबारक व ताला ने उन तमाम वाकयात को कलाम मुकद्दस में जिक्र कर दिया। आज हम आपके सामने उनमें से चंद का जिक्र करेंगे। इंसान की एक फितरत है और वो ये है कि जब उसे इख्तदार या इख्तियार मिलता है तो वो समझता है कि ये हमेशा के लिए है। किसी को हुकूमत मिल जाए, इख्तदार मिल जाए, इख्तियार मिल जाए तो वो सोचता है हमेशा मैं इसी तरह रहूं। यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। हमेशगी अगर है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की जात को है और किसी को नहीं। सिर्फ उसी की शान ये है कि वो शुरू से है आखिर तक रहेगा, वो अजल से है और अबद तक रहेगा, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसकी सल्तनत कभी ना खत्म होने वाली है, दुनियावी सल्तनतें सब खत्म होने वाली। कुल्ल मन अलैहा फान, हर चीज फना होने वाली है सिवाय अल्लाह तबारक व ताला। जितनी हुकूमतें थी सब खत्म होगा। हर एक की मुद्दत है, उस मुद्दत में उन्होंने हुकूमत की, उन बादशाहों ने, उन शहनशाहों ने, उन सलातीन ने, उसके बाद खत्म। यह अलग बात है कि वक्फा मुख्तलिफ था। किसी को 10 साल के लिए हुकूमत मिली, किसी को 20 साल के लिए, किसी को 50 साल के लिए, किसी को 100 साल के लिए, और उस जमाने में तो उम्रें बहुत होती थी, 400 साल, 1000 साल। लेकिन बिलाखिर मौत जब आई, वो हुकूमत, वो सल्तनत, वो इख्तियार, वो इक्तदार सब खत्म हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया, देखो सारी कुदरत, सारी हिकमत, सारी खूबी और ये तमाम चीजें जो हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के दस्ते कुदरत में, ये सब उसी को जेबा है कि वो हमेशा रहे और हमेशा ही उसके साथ रहे, उसके अलावा कोई हमेशा रहने वाला नहीं। सभी खूबी सभी तारीफ है अल्लाह को जेबा, बुजुर्गी है उसी आका है अली जाह को जेबा, वो है सारे जहानों का खुदाए बरतरो बाला, बराबर सारी मखलूकात का है पालने वाला, बराबर सारी मखलूकात का है पालने वाला, वही रोजे कयामत का अकेला हुक्मरा होगा, किसी का मशवरा होगा न कोई दरमिया होगा, किसी का मशवरा होगा न कोई दरमिया होगा। ये सारी तारीफें सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, और हर चीज उसके दस्ते कुदरत में है। आज इख्तदार इख्तियार पाने वाले ये समझते हैं कि ये इख्तदार इख्तियार हमेशा हमारे पास रहेगा, कुरान कहता है नहीं, तो तिल मुल्क मन तशा व तंजिउल मुल्क मिम मन तशा, वो जिसे चाहे हुकूमत अता करे और जिससे चाहे छीन ले, और फिर फरमाया व तो इज्ज मन तशा व तो जिल्ल मन तशा बियदिकल खैर, इज्जत और जिल्लत अगर है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दस्ते कुदरत में, जिसको उसकी बारगाह से इज्जत मिल जाए उसे कायनात में कोई जलील नहीं कर सकता, और जो उसकी बारगाह से जिल्लत जिसका मुकद्दर बन जाए उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। ये सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में, लेकिन इंसान की कैफियत क्या, भूल जाता है मैं हूं, मेरी हुकूमत है, मेरा इख्तियार, मेरा इख्तदार, मैं हर चीज का मालिक हूं, जिसे चाहा खत्म कर दिया, जिस पर चाहा जुल्म कर दिया, जिस पे चाहा ज्यारती कर दी, जिसके हुकूक को गसब कर लिया, उसको नहीं पता उसके ऊपर भी एक मालिक है, और वो मालिक ही नहीं खालिक भी है, खालिक ही नहीं राजिक भी है। जब वो जलाल में आ जाता है तो फिर किसी का ठिकाना नहीं रहता, इसलिए इंसान को हर वक्त हर लम्हे उसके गजब से डरना चाहिए, और उसकी बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाकर आजजी और इनके सारी इख्तियार करनी चाहिए। जो आजजी इख्तियार करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन से उरूज अता करता, और जो गुरूर तकब्बुर करता है उसको जमीन में धसा देता है, उसका नामो निशान मिटा देता। आइए जरा गौर करें और देखें कि जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने हुकूमत अता की, इख्तियार और इख्तदार अता किया, उन्होंने क्या किया। जब से दुनिया कायम हुई है उस वक्त से लेकर आज तक, वैसे तो बेशुमार बादशाह, बेशुमार इंसान ऐसे हुए जिन्हें हुकूमत इख्तदार इख्तियार मिला, लेकिन चंद नाम ऐसे हैं जो मशहूर हैं, आप सब जानते हैं, फिरौन, नमरूद, कारून, अब्राहा, ये ऐसे नाम हैं जिनका जिक्र आप सुनते रहते हैं। आप जानते हैं ये कैसे लोग थे, आइए उनका किरदार भी देखें, उनका तर्ज हुकूमत भी देखें और फिर उनका अंजाम भी देखें। ये सब अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम मुकद्दस में बयान फरमा रहा। लइबरतन लिउलिल अबसार, ये इबरत है अकलमंदों के लिए कि वो इन वाकयात को पढ़कर इबरत हासिल करें और देखें कि कैसे कैसे अपने वक्त के फिरौन, जो अपने आगे किसी को समझते नहीं थे, आज उनका नामो निशान नहीं है। कहां है उनकी हुकूमत, उनका गुरूर, तकब्बुर, तमकनत, नखवत कहां है? सब खत्म हो चुके। नमरूद, जानते हैं ना नमरूद को, मशहूर है। उसके मुकाबिल हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने हर दौर में अपने नेक बरगुजीदा बंदों को, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को भेजा हिदायत के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए, उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए। नमरूद को हुकूमत मिली, समझ बैठा कि बस मैं खुदा हूं, मेरा इख्तदार, मेरा इख्तियार सब पर है। उसका जुल्म सितम, उसका तकब्बुर, उसका गुरूर, उसकी तमकनत, उसका रौब, ये सब देखकर लोग उसके सामने झुकने लगे और अकड़ गया, मैं सब कुछ हूं। ये भूल गया कि इससे बढ़कर भी एक जात है जिसके सामने तू कुछ नहीं है। इसने कहा मैं सब कुछ हूं। लोग उसके यहां गल्ला लेने के लिए जाने लगे, खुराक। कैदसाली हुई ना, तो बादशाह के पास, नमरूद के पास जाने लगे। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम भी चले गए। जो उसके पास आता पूछता, तुम्हारा खुदा कौन है? वो कहते जी आप ही हमारे खुदा हैं। बड़ा खुश होता, चलो इसने मेरी खुदाई को मान लिया। दूसरा आया, उससे पूछा तेरा खुदा कौन है? उसने कहा आप हैं। तीसरे से पूछा, उसने कहा आप हैं। चौथे से पूछा, जो जो आ रहा उससे पूछ रहा। उन्हीं के दरमियान हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम भी, अब ये पूछता पूछता जब आया, इसका गुजर हुआ तो हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम से पूछता है तुम्हारा खुदा कौन है? आपने फरमाया मेरा खुदा वो है जो मारता भी है और जिलाता भी है, मारता भी है और जिलाता भी है, यानी जिंदा भी करता है। अब तक तो सारे जो आ रहे थे ना वो कह रहे थे आप ही खुदा हैं, लेकिन जब ये जवाब सुना इसको थोड़ा सा गुस्सा आया। अच्छा तुम्हारा खुदा मारता जिलाता है, ये तो मैं भी कर सकता हूं। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला जिक्र करता है, अल्लाह फरमाता है अलम तरा इलल लजी हाज इब्राहिम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने उस शख्स को नहीं देखा जो रब के बारे में इब्राहिम से झगड़ रहा था, हजरत इब्राहिम से लड़ रहा था, जब उन्होंने कहा मेरा रब मारता है, जिलाता है, जिंदगी अता करता है, तो उसने कहा आना ओही व उम्मीद, ये तो मैं भी करता हूं। दो आदमियों को बुलाया, तेरे लिए क्या हुक्म है? उसने कहा हुजूर मुझे सजाए मौत हो चुकी है। कहा जाओ इसे छोड़ दो, आजाद कर दो। दूसरे से पूछा तेरे लिए क्या हुक्म है? उसने कहा मुझे आजाद कर दिया गया है। कहा इसकी गर्दन उड़ा दो। गर्दन उड़ा दी। अब कहते हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम से, तुम कहते हो मेरा रब मारता है जिलाता है, देखो मैंने भी ये किया, जिसको आजादी मिल गई थी जिंदगी की तरफ जा रहा था मैंने मार दिया, और जिसको सजाए मौत हो गई थी मरने के लिए जा रहा था मैंने आजाद कर दिया, जिला दिया। तो तुम कहते हो मेरा रब मारता जिलाता है, आना ओही व उम्मीद, ये तो मैं भी करता हूं, मैंने मार भी दिया, जिला भी दिया। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने सोचा होगा ये बेवकूफ ऐसे नहीं मानेगा, उन्होंने जो कहा ना मेरा रब मारता जिलाता है, ये कहने का मकसद ही कुछ और था। मकसद ये था कि मेरा रब तखलीक करता है, पैदा करता है और मुर्दे को जिंदा भी कर सकता है। उसने कुछ और समझा, एक को मरवा दिया, एक को छोड़ दिया और कहा ये तो मैं भी करता हूं, अना ओही व उमी। तो सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम ने फरमाया, अच्छा अगर ये बात है तो मेरे रब की एक शान ये है कि वो मशरिक से सूरज निकालता है, तू मगरिब से निकाल दे। फइन्नल्लाह याति बिशम्सि मिनल मशरिक फाति बिहा मिनल मगरिब। मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है, तू मगरिब से निकाल दे। अब खामोश हो गया। अब आसमान पर तो इख्तियार नहीं था ना, जमीन पे तो एक को बुलाया मार दिया, दूसरे को छोड़ दिया। सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम की ऐसी बयान दलील सुनकर कुरान कहता है फबोहितल्लज़ी कफर, खामोश हो गया, मबहूत हो गया, मैं क्या जवाब दूं। अगर खुदाई का दावा है तो फिर वही करके दिखाओ जो इब्राहिम का खुदा कर रहा है। फरमाए मेरा रब तो मशरिक से निकालता है, तो मगरिब से निकाल दे। खामोश। तो उसने क्या किया, जो भी आ रहा था उसे गल्ला दे रहा था, अनाज। तो सैयदना इब्राहिम अलैहि सलाम को अनाज नहीं दिया, वैसे ही लौटा दिया। गुस्सा आ गया ना। और जो आ रहे थे उनसे पूछता तुम्हारा रब कौन है, वो कहते जी आप ही हमारे रब हैं, खुश होकर उनको दे देते। और जब ये पहुंचे और इन्होंने दलील दी, दलील का कोई जवाब नहीं बन पड़ा, इनको गल्ला नहीं दिया वापिस। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब वापस आए, रास्ते में आपको ख्याल आया कि कोई गल्ला तो मुझे मिला नहीं, जब मैं घर पहुंचूंगा तो जाहिर है घर वाले सवाल करेंगे। तो आपने क्या किया, एक रेत का टीला था, कपड़े में रेत उठा ली और उसको बांध लिया, जैसे गल्ले अनाज को बांध लेते हैं ऐसे उसको बांध लिया और उसको साथ साथ लेकर चले कि जब मैं घर पहुंचूंगा घर वाले दूर से देखेंगे, अच्छा ये कुछ लेकर आ रहे हैं, अनाज लेकर आ रहे हैं, तो कोई सवाल मुझसे नहीं करेंगे। जाहिर है अब वो सवाल करें फिर मैं उनको तफसील बताऊं, ये हुआ इस वजह से मुझे नहीं मिला। अल्लाह तबारक व तआला की शान देखिए, वो अपने नेक बंदों की किस तरह मदद फरमाता। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने रेत को कपड़े में बांध लिया कि घर वाले समझे अनाज है, और घर जाकर एक कोने में वो जो कपड़ा था जिसमें रेत थी, एक पोटली बनी हुई थी, कोने में रख दिया। आपकी अहलिया मोहतरमा आई, उन्होंने देखा कि अनाज होगा, वो उसको लेकर गई और जब जाकर खोला तो बेहतरीन किस्म का खाना उसके अंदर, वो जो रेत थी वो सब मजेदार खाने में तब्दील हो गए। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम से कहा कि वह खाना तो बहुत अच्छा लाए। आप मुस्कुरा दिए कि सोचा कि मैं तो रेत लेकर आया था, ये मेरे रब की शान है, ये उसकी तरफ से तोहफा मिला। आपने कुछ बताया नहीं कि मैंने कहां से रेत ली, क्या हुआ नमरूद से, क्या बात हुई, कुछ नहीं बताया, बस अपने रब का शुक्र अदा किया, मौला तेरा करम। इस तरह अल्लाह तबारक व ताला नेक बरगुजीदा बंदों की मदद फरमाता। तो अब क्या हुआ, नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो गया, उसको अपनी हुकूमत पर, अपने इख्तदार पर, अपने इख्तियार पर बड़ा नाज था। मेरे सामने कोई नहीं बोल सकता, मैं जिसको चाहूं मरवा दूं, मैं जिसको चाहूं खत्म कर दूं, मेरा इख्तियार हर जगह है, मेरा इख्तदार हर जगह है। अब देखिए अल्लाह तबारक व ताला की शान, वाकई उसके सामने कोई नहीं बोल सकता था, जाहिर है जो बोलता उसकी शामत आ जाती। अब जिससे पूछता तेरा रब कौन, वो कहता जी आप हमारे रब, अब ये खुश हो जाता, इसने मुझे मान लिया। लेकिन जाहिर है नबी तो झूठ बोल नहीं सकता, और नबी की शान यही है कि वो सच्चाई को फैलाने के लिए आता है, और जो सच्चा होता है वही नबी होता है। नबी कभी झूठ नहीं बोलता, क्या है जान चली जाए लेकिन नबी झूठ नहीं बोल सकता, वो सच्चे खुदा का सच्चा नबी होता। तो इब्राहिम अलैहि सलाम ने जवाब दे दिया उसको। अब क्या हुआ, अल्लाह तबारक व ताला ने दो फरिश्ते नमरूद के पास भेजे, जाओ इसको जाके समझाओ ताकि ये अपना गुरूर तकबुर खत्म कर दे। उन्होंने जाके समझाया, अल्लाह की हाकमियत को मान ले, उसकी कुदरत पर ईमान ले आ। कहता नहीं, मैं सब कुछ हूं। फरिश्ते आ गए वापस, अल्लाह ने फरमाया फिर जाओ, फरिश्ते फिर गए, फिर इसने इनकार किया, वापस आ गए, अल्लाह फरमाता है फिर जाओ। तीन मर्तबा फरिश्ते नमरूद के पास गए उसको समझाने के लिए, नहीं माना। जब इसने इनकार कर दिया तीसरी मर्तबा भी, जाहिर है वो तो गुरूर तकब्बुर का पुतला था, मेरे आगे कोई नहीं है, मेरे सामने कोई नहीं बोल सकता, मेरी हुकूमत है। तब एक फरिश्ता आया और उसने कहा, अच्छा ऐसा करो, जो तुम्हारे हवारी हैं, मानने वाले हैं, तुम्हारे सिपाही या जो भी हैं, उमाल हैं, सबको जमा कर लो। उसने जमा कर लिया सबको। जब सारे के सारे जमा हो गए, तब अल्लाह तबारक व ताला ने मच्छरों का अजाब भेज दिया। मच्छर कितनी मामूली शय है कि हम हाथ में पकड़ के ऐसे मसल दे खत्म हो जाए। अगर हाथ को ऐसे मारे जहां मच्छर हो, तो कितने मच्छर हमारी हथेली के दरमियान, हाथ के दरमियान मर जाए, खत्म हो जाए। इंसान ताकतवर है, मच्छर की कोई हैसियत नहीं। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला यही दिखाना चाहता था नमरूद को कि तेरी सल्तनत हर एक पर है, लेकिन एक इतनी सी मखलूक तेरे काबू में नहीं। मच्छरों का अजाब आया, जैसे झुंड के झुंड काफी तादाद में आए, और जो उसके सिपाही थे या जो भी उसके उम्माल थे, उनके जिस्मों को तेजी के साथ खाना शुरू कर दिया, काटना शुरू कर दिया, उनका खून चूस लिया, और देखते ही देखते हड्डियों का ढांचा बना दी, सब खत्म हो गए आने वाहिद में, देखते ही देखते। उसके बाद एक मच्छर उसकी नाक में घुसा और दिमाग में पहुंच गया। किसके? नमरूद के। नाक में से घुसकर दिमाग में बैठ गया और वहां बैठकर उसने दिमाग को खाना शुरू कर दिया, काटना शुरू कर दिया। अब इसकी सख्त तकलीफ हुई। अल्लाह का अजाब देखो, इतना बड़ा बादशाह, कोई तबीब उसका इलाज नहीं कर सका, कोई हकीम इलाज नहीं कर सका, कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर सका, दुनिया की कोई दवा उसको फायदा ना पहुंचा सकी। फायदा कैसे पहुंचा, यह भी खुदा की शान देखो। उसके सर पे जब जूता पड़ता था, जरब सर पे पड़ती थी, तो अंदर जो मच्छर था, जो दिमाग खा रहा था, वो कुछ देर के लिए रुक जाता था, तो नमरूद को सुकून मिल जाता, और कुछ देर के बाद फिर वो काटना शुरू करता था, फिर ये कहता था मेरे सर पे मारो, तो जो आता था वो दो तीन जूते सर पे मारता था। ये बादशाह की इज्जत अफजाई हो रही, जो दरबार में जाए दो जूते नमरूद के सर पे मार। अब बाद रिवायतों में आया कि लाठी मारते थे, लाठी, और जितनी ताकत से मारते थे उतना उसको ज्यादा सुकून मिलता था, इसलिए कि जब वो जरा पहुंचती थी तो मच्छर अंदर जो काट रहा था वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता। ये अल्लाह तबारक व ताला की शान है। उसने दिखा दिया कि गुरूर और तकब्बुर करने वाला, अपने इख्तदार, अपने इख्तियार, अपनी सल्तनत पर नाज करने वाला कि मेरी इतनी फौज है, मेरी इतनी ताकत है, मैं जिसको चाहूं मार दूं, मैं जिसको चाहूं खत्म कर दूं, खुदाई का दावा करने वाला, जमीन पर अकड़ कर चलने वाला, गुरूर और नखवत इख्तियार करने वाला, एक अदना सी मखलूक को काबू में नहीं ला सकता। अदना सी मखलूक, मच्छर, यहां तक के उसी कैफियत में मार खा खा के नमरूद वासिले जहन्नुम हो गया। एक मच्छर ने उसे मार दिया, खत्म कर दिया। लइबरतन लिउलिल अबसार, अल्लाह तबारक व ताला बता रहा है, कुरान हमें बता रहा है, देखो गुरूर तकब्बुर मत करना, ये सब दुनिया में रह जाएगा, बाकी रहने वाली अगर कोई जात है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू अमन वलहू की जात, और कोई नहीं। उसी का इख्तियार हर मखलूक पर है, अदना से अदना हो और आला से आला हो। बेशुमार मखलूक आता है ना, चींटी कितनी छोटी मखलूक, छोटी सी बिल्कुल, और हाथी कितनी बड़ी मखलूक, दोनों पर उसका इख्तियार है, दोनों पर इख्तियार। उसने अदना से अदना मखलूक भी पैदा की और बड़ी से बड़ी जसीम ताकतवर हाथी की मिसल भी पैदा की, हर किस्म की मखलूकात पैदा कर दी और बता दिया कि देखो हमारा इख्तियार हर एक पर, हर चीज हमारे दस्ते कुदरत में है, तुम कुछ नहीं कर सकते। इतने से मच्छर को नमरूद की फौज काबू कर सकी, उसकी दौलत काबू कर सकी, उसके सिपाही जो उसकी हिफाजत के लिए खड़े थे वो उस मच्छर को दिमाग में से निकाल सके? नहीं। इन्ना बत्शा रब्बी का लशदीद, तुम्हारे रब की पकड़ सख्त है। जब उसका अजाब, उसकी गिरफ्त किसी को पकड़ ले तो दुनिया की कोई ताकत छुड़ाने वाली नहीं। बता दिया कि देखो जिस सल्तनत पर, जिस इख्तियार और इख्तदार पर तुम नाज कर रहे थे वो सब तुम्हारे पास मौजूद है, एक मच्छर पर काबू नहीं पा सके। सर पे जरब पड़ती है वो रुक जाता है, इसको सुकून मिल जाता है और उसके बाद फिर काटना शुरू कर देते। इसी में ही उसकी मौत वाकई हो गई, इबरतनाक अंजाम नमरूद का हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया देखो अपने इख्तियार पर सल्तनत पर नाज करने वाला कैसी बेदर्दी की मौत से मरा, इबरतनाक मौत उसकी हुई। और रिवायत में आता है कि जब दरबार में लोग आकर उसे देखते थे तो रहम खाते थे, तरस खाते थे कि देखो इसकी क्या कैफियत, किस तरह ये दर्द से तड़प रहा है, बेचैन हो रहा, सर पे जूता पड़ेगा तो सुकून मिलेगा, सजा भी देखो कैसी, सुकून मिला तो जूता पड़ने से। ऐसे भी लोग हैं जिनको जूता पड़ता है तभी सुकून मिलता, बगैर उसके नहीं मिलता। खैर बहरहाल हो सकता है नमरूद की कौम के हों। तो अल्लाह तबारक व ताला ने दिखा दिया अपने वक्त का कितना बड़ा बादशाह, खत्म। गुरूर किया, तकब्बुर किया, सजा दे दी। और जब तक छोड़ा छोड़ा और जब पकड़ा खुदा की पकड़ आई, दुनिया की कोई ताकत बचा ना सकी। कारून, अल्लाह तबारक व ताला ने बेशुमार खजाना उसे अता किया, अपने दौलत पर नाज, मेरे पास दौलत, और दौलत से आदमी जो चाहे खरीद ले, यही होता है ना, जिसको पैसे दो काम करने के लिए तैयार है। इसीलिए लोग दौलत के पीछे भागते हैं कि दौलत होगी तो हमें सुकून होगा, दौलत होगी तो घर होगा, दौलत होगी तो गाड़ी होगी, दौलत होगी तो ओहदा होगा, दौलत होगी तो मनसब होगा, दौलत होगी तो ये आराम वो आराम, ये आसाइश वो आसाइश। लेकिन जब दौलत आती है उतना ही बेसुकून हो जाता, जितना ज्यादा दौलतमंद उतना ही ज्यादा फिक्रमंद, जितना ज्यादा दौलतमंद उतना ही ज्यादा फिक्रमंद। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा है, एक शहर फतह हुआ और जब कोई शहर फतह होता था तो वहां से माले गनीमत आता था, जो काफिर छोड़ के भाग जाते ना उसे कहते हैं माले गनीमत, मुसलमान ले आते उसको, मुसलमानों के लिए उस माल को इस्तेमाल करना जायज। माले गनीमत आया और बहुत सारी दौलत आई, बहुत सारी दौलत। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है, आप मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा, मस्जिद नबवी के फर्श पर दौलत अंबार लगा दिए गए, सहाबा खुश हैं। फारूक आजम ने देखा आंखों से आंसू जारी, आंखों से आंसू जारी हो, हैरान हुए, या अमीरुल मोमिनीन या खलीफतुल मुस्लिमीन आप रो रहे, आपको तो खुश होना चाहिए, फलां शहर फतह हुआ है, मुसलमानों को फतह हासिल हुई है, वहां से इतना माल गनीमत इतनी दौलत आई है। फरमाया हां बेशक तुम सही कह रहे हो, हमें फतह हुई है, ये इतनी दौलत आई है, लेकिन मुझे अपने आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद याद आ रहा है, उसी वजह से मैं रो रहा। सरकार ने फरमाया था जब दौलत आती है तो ईमान कमजोर हो जाता, दौलत आती है तो ईमान कमजोर हो जाता है, मैं देख रहा हूं कि अब हमारे हुदूद सल्तनत में मुसलमानों के पास दौलत आ रही है, मुझे डर है कि इसके आने की वजह से आगे चल के तुम्हारे ईमान कमजोर ना हो जाए, तुम्हारे ईमान कमजोर ना हो जाए। कितनी सच्ची बात कही थी फारूक आजम। यही हो रहा है, यही है। जितनी दौलत आज मुसलमानों के पास है इससे पहले कभी नहीं थी, जितनी हुकूमतें आज मुसलमानों के पास हैं इससे पहले कभी नहीं थी, जितने तेल की ताकत और ये हीरे जवाहिर कीमती पत्थर मदनियात आज मुसलमानों के पास है इससे पहले कभी नहीं, जितनी फौज और इफरादी कुव्वत असलहा आज मुसलमानों के पास है इससे पहले कभी नहीं था, और जितने जलील मुसलमान आज हैं इससे पहले भी कभी नहीं थी। यह हकीकत है। क्यों? पहले दौलत नहीं थी लेकिन ईमान की दौलत थी, जज्बा था, इश्क रसूल दिल में था, इसलिए बड़ी से बड़ी ताकत से टकरा जाते थे, परवाह नहीं करते थे। कैफियत क्या थी? ईरान फतह करने के लिए जा रहे हैं, हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु घोड़े पर हैं, उन्होंने देखा मुसलमान आ रहे हैं, ये तो आंधी तूफान की तरह आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, कैसे रोका जाए? जो दरिया पर पुल था, पुल होते हैं ना दरिया पे जिससे गुजर के जाते हैं, उन्होंने अपना पुल खुद तोड़ दिया। जब पुल नहीं होगा ये दरिया के उस तरफ रुक जाएंगे और हमारा जो ये किला है, हमारी सल्तनत, ये सब महफूज हो जाएगी। मुसलमान घोड़े दौड़ाते हुए जा रहे हैं, दरिया पर पहुंचे, देखा कि उन्होंने पुल तोड़ दिया है। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जलीलुल कदर सहाबी उस फौज की कमान कर रहे हैं, सुपे सालार हैं। एक मिनट के लिए देखा पुल टूटा हुआ है, सामने दरिया मौजे मार रहा है और दरिया के उस पार काफिरों का किला है जो चमक रहा है, दमक रहा है। एक मिनट के लिए सोचा, उसके बाद कहा मुसलमानों ये दरिया हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। नारे तकबीर बुलंद किया, अल्लाहु अकबर का नारा लगाया और अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। वो लोग देखते रह गए। हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु जो सुपे सालार हैं, आपने घोड़ा दरिया में उतारा, आपको देखकर दीगर मुसलमानों में भी जोश पैदा हुआ, उन्होंने भी अल्लाहु अकबर का नारा लगाया और अपने घोड़े दरिया में डाल दिए। दरिया मौजे मार रहा है, इनका रास्ता नहीं रोक सका, दरिया से गुजरते चले गए, उस पार निकल गए। वो हैरान रह गए, कहते देव आ गए, देव आ गए, देव आ गए। डर गए खौफ से, ये तो इंसान नहीं है, ये देव है, दरिया में उतर गए। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था, दश तो दश दरिया भी न छोड़े, हमने बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए खोड़े हमने। जहां पहुंचे जमी को आसमां से कर दिया ऊंचा, जहां ठहरे दरो दीवार का नक्शा बदल आए। जहां ठहरे दरो दीवार का नक्शा बदल आए, समंदर में भी जिनकी दौड़ की राहें निकल आई, पहाड़ों में भी जिनके फैज के चश्मे उबल आए, पहाड़ों में भी जिनके फैज के चश्मे उबल आए। वो थे मुसलमान, दौलत नहीं थी लेकिन ईमान की दौलत, इश्क रसूल की दौलत उनके पास थी। उनका भरोसा ना असलहे पर था, ना सामाने हरब पर था, सिर्फ अल्लाह पर था या रसूलुल्लाह पर था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरिया में कूद गए, घोड़े दौड़ाते हुए निकल गए, दरिया में से ऐसे गुजर गए जैसे खुशकी पे से गुजर जाते, ऐसे मुसलमान। तो दौलत ईमान कमजोर कर देती है। कितने ममालिक हैं मुसलमानों के, मुस्लिम ममालिक 32 से ज्यादा, कितनी दौलत है? है किसी में हिम्मत कि सुपर पावर को आंखें दिखा सके? नहीं, एक भी ऐसा नहीं है। डर रहे हैं, कांप रहे हैं, हमारी हुकूमत खत्म ना हो जाए, हमारा इख्तियार खत्म ना हो जाए, हमारा इख्तदार खत्म ना हो जाए। ईमान कमजोर हो चुके हैं। और वो जिनके पास दौलत नहीं थी, कपड़ों में पेवन लगे हुए थे, सूखी रोटी खाकर गुजारा कर रहे थे, उनके नाम से बड़े बड़े हुक्मरान लर्जा बरंदाम हो रहे। ईमान की दौलत। तो कारून के पास दौलत, लेकिन क्या हुआ? क्या उसकी दौलत उसे बचा सकी? अपनी तमाम तर दौलत के साथ जमीन में धस गया कारून, अपनी तमाम दौलत के साथ जमीन में धस गया। और याद रखिए, दौलत फी नफ्से ही बुरी चीज नहीं, उसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बना दे। दौलत कारून के पास भी थी, दौलत नमरूद के पास भी थी, दौलत फिरौन के पास भी थी, दौलत उस्माने गनी रदी अल्लाह तआला के पास। यही दौलत कारून को लेकर जमीन में उसने धसा दिया, इसी दौलत ने फिरौन और नमरूद को जहन्नम में पहुंचा दिया, और इसी दौलत से सैयदना उस्माने गनी रदी अल्लाह तआला ने हुजूर से जन्नत खरीद ली। दौलत ये भी थी, दौलत वो भी थी, इस्तेमाल गलत हुआ इसी दौलत ने जहन्नम में पहुंचा दिया, इस्तेमाल सही हुआ उस्मान गनी को जन्नत बना दिया, जन्नत में पहुंचा दिया। तो कारून अपनी दौलत के साथ खत्म, जमीन में गया। क्या उसकी दौलत उसे बचा सकी? नहीं। नमरूद का इख्तदार इख्तियार उसे बचा सका? नहीं। एक मामूली मच्छर ने काम तमाम कर दी, खत्म हो गया। अब आइए, फिरौन, इसका नाम तो सुना है ना, नाम सुना है, मुलाकात हुई है कभी? हो जाएगी मुलाकात, आजकल भी है मौजूद। खैर, मैं उस दौर के फिरौन की बात कर रहा हूं, इस दौर के नहीं। उसने भी खुदाई का दावा किया, मैं खुदा हूं, और अपनी सल्तनत बचाने के लिए कितना एहतमाम। उस जमाने में इल्मे नजूम बड़ा उरूज पर था, ये जितने नजूमी थे ये हिसाब लगा कर कैलकुलेशन करके ये बताते थे कि तेरी सल्तनत की तबाही का बाइस एक बच्चा। तो इसने क्या किया, जब उन्होंने पहले बताया ना कि एक बच्चा पैदा होगा, तो इसने घर घर अपनी फौज, अपनी सिपाही भेजकर जितने नौ मौलूद लड़के थे, बच्चे, सबको कत्ल करा दिया, मां बाप के सामने कत्ल करा दिया। ऐसा जालिम और जाबिर इंसान फिरौन, पूरे शहर में, पूरे मुल्क में मनादी कर दी, सिपाही घर घर जा रहे हैं, तलाशी कर रहे हैं, देख रहे हैं, जासूस छोड़ दिए, ऐसा ना हो कि बच्चा वो पैदा हो जाए और मेरी हुकूमत, मेरे इख्तदार, मेरे इख्तियार, मेरी सल्तनत की तबाही का बाइस बने। लेकिन खुदा की शान देखो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई, हजारों बच्चों को कत्ल करा दिया, जिसको खुदा बचाना चाहता था उनका बाल बीका भी नहीं कर सका। और मशीयत रब्बानी मुस्कुरा रही थी, तू अपने इख्तदार को बचाने के लिए बच्चों को कत्ल करा रहा है, अरे मैं जिससे तेरा इख्तदार खत्म कराऊंगा उसको तेरे ही घर में पलवाऊंगा। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान, तू मारना चाहता है, मैं बचाना चाहता हूं। और हम अपनी कुदरत का ऐसा करिश्मा दिखाएंगे कि मूसा को तेरे घर में पलवाएंगे और उन्हीं के जरिए तेरे इख्तदार इख्तियार खत्म करवा देंगे। उस तफसील में तो मैं नहीं जा रहा, وہ تو بہت تفصیل آپ علماء کرام سے سن چکے ہیں، کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پھر صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کے حوالے کیا گیا، پھر وہ بہتا ہوا آیا اور اس نے پکڑ لیا. بہرحال ایک دن بیٹھا ہے اپنے تخت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، بالکل چھوٹے شیر خوار گود میں، کہتا میں خدا ہوں. جیسے اس نے کہا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ اس کے منہ پہ رسید کی، منہ گھوم گیا، مارا تو ادھر ہو گیا منہ، غصے میں آ کر اٹھا کے فوراً ایک طرف رکھ دیا. بلاؤ جلاد کو، ابھی اس بچے کا سر قلم کر دو. جلاد آ گیا تلوار لے کر. حضرت بی بی آسیہ دوڑی، اٹھا کے حضرت موسیٰ کو سینے سے لگا لیا. ارے کیا کر رہا، ارے اس نے میرے تھپڑ مارا ہے، معصوم ہے، بچہ ہے، بچہ ہے، تھپڑ ایسے مارا جیسے کسی پہلوان نے مارا، یہ بچہ ہے معصوم. اس کو نہیں معلوم تھا نبی کی طاقت کیا ہوتی. نبی کی طاقت عام انسانوں کے برابر نہیں ہے. جانتے ہو نبی کی طاقت کیا ہے؟ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے 40 جنتی مردوں کے برابر طاقت دی گئی ہے. 40 جنتی مردوں کے برابر، اور دنیا کے 100 مردوں کی طاقت جنت کے ایک مرد کے برابر. سرکار کی طاقت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت کا مقابلہ کر سکتا ہے کوئی؟ اس زمانے کا پہلوان رکانہ، جس کی طاقت، ہمت، شجاعت، بہادری کے چرچے تھے، اس کو یہ ناز تھا مجھے آج تک کسی نے گرایا نہیں، مجھے کوئی پچھاڑ نہیں سکتا، گرا نہیں سکتا. ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ٹہلتے ہوئے رکانہ پہلوان کے گھر تک پہنچ گئے، یا جو اس کا اکھاڑا تھا جو بھی تھا وہاں پہنچ گئے. اس نے دیکھا، آپ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ہاں میں ہی محمد. آپ نے دعویٰ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ ہاں میں نے دعویٰ کیا. اچھا چلے، میں اور کچھ تو جانتا نہیں، میں تو صرف کشتی جانتا ہوں، ایسا کریں آپ مجھ سے کشتی لڑیں، اگر آپ نے مجھے گرا دیا، پچھاڑ دیا، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں. بتاؤ یہ کیسی بات ہے، آپ نے مجھے گرا دیا، پچھاڑ دیا، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں. تب حضور فرماتے کہ میں کوئی کشتی لڑنے کے لیے آیا ہوں، میں تو ہدایت پہنچانے کے لیے آیا ہوں، میں تو نبی ہوں، نبی کا کام کشتی لڑنا ہے؟ نہیں. سرکار نے سوچا ہوگا یہ بے وقوف ایسے ہی مانتا ہے تو ایسے ہی صحیح، آؤ اس کو اپنی طاقت بھی دکھا دیں، یہ اپنی طاقت پہ بڑا ناز کر رہا ہے، غرور تکبر ہے، مجھے کسی نے گرایا نہیں. کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے گرا دیا میں مان لوں گا واقعی آپ اللہ کے نبی. حضور نے فرمایا آ جاؤ. بڑا حیران ہوا، انہوں نے فوراً چیلنج قبول کر لیا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، یہ بھی کھڑا ہوا، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے. جب پہلوان لڑتے ہیں نا، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ایک دوسرے کی طاقت دیکھتے ہیں، ابھی یہ طاقت دیکھ رہا تھا، سرکار نے اٹھایا پھینک دیا زمین پہ گرا. رہی یہ کیا ہوا، حیران ہو گیا، آپ نے تو ایسے پھینک دیا جیسے کسی بچے کو پھینک دیتے، یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں نہیں میں ابھی سنبھلا نہیں تھا، آپ نے تو ایک دم ہی دوبارہ. حضور نے فرمایا پھر آ جاؤ. دوبارہ آیا، اونچا نیچا ہوا، آگے پیچھے ہوا، اپنے جسم کو ذرا سیٹ کیا، اچھل کے آگے بڑھا، میرے آقا نے پکڑا دونوں ہاتھوں سے، پھر اٹھا کے پھینک دی. پھر حیران رہ گئے، یہ کیا ہوا؟ پھر کہتا نہیں ایک مرتبہ اور، اگر اب کیسے پھینک دیا تب مان لوں گا واقعی تم نبی ہو، میری طاقت آج تک کسی نے مجھے گرایا نہیں. حضور نے فرمایا پھر آ جاؤ. پھر آگے بڑا، اچھلا، کودا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور ایک معمولی بچے کی طرح پھر اٹھا کر دور پھینک دی. یا رسول اللہ، جاری ہے. میرے آقا نے بتا دیا کہ مت سمجھ کے طاقت تیرے اندر زیادہ ہے، تین مرتبہ اٹھا کر ایسے پھینک دیے جیسے کسی بچے کو پھینک دیتے. اس نے کہا باقی اس فن میں بھی آپ ہمارے امام ہیں، ہر فن میں امام ہیں تو اس میں بھی آپ ہمارے امام ہیں. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ نبی کی طاقت کو معمولی مت سمجھو. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، فرعون کے منہ پہ ایک تھپڑ مارا، منہ گھما دیا، और वो कहता है नहीं मासूम नहीं है, थप्पड़ ऐसे लगा है जैसे पहलवान ने मारा। फिर क्या करें, बुलाओ नजूमियों को, फौरन हिसाब करें और बताएं ये वही बच्चा तो नहीं है जो आगे चल के मेरी सल्तनत की तबाही का बाइस बने। फौरन नजूमी आ गए, सब आकर बैठ गए, अब कैलकुलेशन कर रहे हैं, हिसाब लगा रहे हैं, इल्मे नजूम हिसाब है ना, हिसाब लगा रहे। अल्लाह ने उनके दिमाग को ही खराब कर दिया। हर चीज उसके दस्ते कुदरत में, अपने नबी को बचाना था, कैलकुलेशन हिसाब गलत हो गया। इसने कहा क्या हुआ, कब वो बच्चा जो आपकी सल्तनत की तबाही का बाइस बनेगा पैदा हो चुका है, परवरिश पा रहा है, लेकिन ये वो नहीं है। मूसा अलैहि सलाम की तरफ, ये बच्चा वो बच्चा नहीं है। फिर जरा सुकून हो गया, हाँ चलो ठीक। कहने का मतलब ये था, अपनी सल्तनत को बचाने के लिए कितनी उसने कोशिश की, हजारों बच्चों को, नामौलूद बच्चे पैदा हुए भी उनको कत्ल करा दिया। लेकिन अल्लाह ताला की शान देखो, जिस वजह से उसने कत्ल कराया उसी बच्चे को मूसा फिरौन के घर में पलवाया, मूसा अलैहि सलाम को फिरौन के घर में पलवाया, और उन्हीं के जरिए उसकी सल्तनत की तबाही हुई। पता जब चला, जब आपने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह को एक मान, फिर घबरा गया, कौन है तुम्हारा रब? फरमाया वो वाहिद है, वो अहद है, वो यकता है, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, मैं उसका रसूल, मुझे मान। इसने कहा मैं खुदा हूं। इसने जादूगरों को बुलाया, अल्लाह ने फरमाया मूसा अपना असा फेंक दो। इन्होंने असा फेंका, लाठी, वो एक बहुत बड़ा अजदाहा बन गया, इतना बड़ा अजदाहा कि उसका एक जबड़ा जो था नीचे का वो जमीन पर, और दूसरा फिरौन की इमारत जहां खत्म हो रही है वहां पर। अब अंदाजा करो कितना बड़ा उसका जबड़ा होगा और कितना कवि हैकल वो अजदाहा होगा, और वो फिरौन के पीछे जब इसने देखा तो भागा वहां से, अपने तख्त के पीछे घुस गया। अब कहता है मूसा बचाओ, इसको उठाओ, इसको हटाओ। उसको पता था मुसीबत आएगी तो नबी बचाएगा और कोई नहीं बचा सकता, मुसीबत में नबी बचाता है। अल्लाह ने फरमाया मूसा ये असा उठा लो, आपने पकड़ लिया, वो फिर लाठी बन गया। खैर ये मौजजात होते रहे। आखिरी फिरौन का एंड क्या हुआ, उसके गुरूर तकब्बुर नखवत इख्तदार इख्तियार, उसका अंजाम क्या हुआ, इसको पता चला कि हजरत मूसा अलैहि सलाम बनी इसराइल को लेकर रवाना हो गए। इसने कहा अच्छा मूसा रवाना हो गए, ठीक है। सुबह जब मुर्ग अजान देगा, मुर्गा अजान देता है ना, सुनिए अजान, कभी मौज़िन की नहीं सुनी होगी, मुर्गे की क्या सुन, चलो खैर सुन लोग, हाँ सुनी तो होगी लेकिन खैर उस पर आते नहीं, उठकर नहीं आते, सुन तो लेते हैं लेटे लेटे। तो फिरौन ने कहा जब मुर्ग अजान देगा सुबह, बस उस वक्त मैं निकलूंगा मूसा का पीछा करने के लिए, इसलिए कि उस वक्त तक ये ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं पकड़ लूंगा। अल्लाह के हुक्म से मुर्गे ने अजान ही नहीं दी, ये इंतजार ही करता रहा, अभी अजान देगा मैं निकलूंगा, अभी अजान देगा, अजान ही नहीं दी। जब देखा कि सुबह हो गई, अरे सुबह हो गई, मुर्ग ने अजान नहीं दी, फिर इसने एक बकरी जिबा कराई, उसकी कलेजी पकवाई और कहा जितनी देर कलेजी खाने में मुझे लगेगी इतनी देर में मेरा यह पूरा लश्कर तैयार हो जाना चाहिए। बाज ने लिखा कि उसकी तादाद 6 लाख थी, 6 लाख, और बाज ने इससे ज्यादा की तादाद भी लिखी, बस इतनी देर में तैयार हो जाए, मूसा का पीछा करना है, जहां मिलेंगे हम लड़ेंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, लश्कर तैयार हो गया, ये अपने घोड़े पर सवार हो गए, मूसा अलैहि सलाम वहां से आगे बढ़ चुके काफी। आगे चलते चलते जब आप पहुंचे, दरियाए नील आ गया। जब वहां पहुंचे तो हजरत युशै बिन नून, जो हजरत मूसा अलैहि सलाम के साथी थे, उन्होंने देखा कि आगे दरिया है, घोड़ा तो आगे जा नहीं सकता, ये लश्कर कैसे दरिया अबूर करेगा, तो पलटकर पूछा मूसा आपके रब ने क्या हुक्म दिया था और किस रास्ते की तरफ भेजा था? फरमाया इसी रास्ते की तरफ। इन्होंने कहा अच्छा आगे देखा तो दरिया है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े फिर इनकी हिम्मत नहीं हुई, फिर पलट के पूछते यही रास्ता है, हाँ हाँ यही रास्ता, फिर अपना घोड़ा बगाया आगे देखा दरिया मौजे मार रहा है, फिर डर गए, मूसा यही रास्ता है, रब ने यही कहा था, फरमाया हाँ यही कहा था, हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। जब आप दरिया के करीब पहुंचे, हुक्म इलाही हुआ मूसा अपना ये आसा लाठी दरिया में डाल दो, जैसे ही दरिया में डाला दरिया में एक रास्ता बन गया, और बाद में कहा कि 12 रास्ते बन गए, फन फजरत मिन हुस्नता अशरत आईना, 12 रास्ते बन गए, और जब 12 रास्ते बने अब मूसा अलैहि सलाम गुजर रहे और उनके जितने लश्करी थे वो सब गुजर रहे, और कमाल की बात क्या थी, जो लोग दूसरे रास्ते पर थे उनको ये ख्याल हुआ कि हमारे साथी जो दूसरे रास्तों पर हैं हम उनको देख नहीं सकते, हजरत मूसा अलैहि सलाम को ख्याल हुआ, अल्लाह ने फरमाया ये असा जो है ना ये दीवार पे मारो, और वो दीवार कैसी थी, मिट्टी की नहीं थी, पानी की दीवारें थी, पानी की, दरिया में से गुजर रहे ना, पानी की दीवारें बन गई, जब असा मारा तो खिड़कियां बन गई, गुजरने वाले एक दूसरे को देख रहे, अल्लाह की शान देखो, हर चीज उसके ताबे है, शजर हजर हो जमादात हैवानात हो, शम्सो कमर हो लालो गहर हो, कायनात की कोई चीज हो, जर्रा जर्रा उसके ताबे है, जो वो चाहे जैसा हुक्म दे, कायनात का हर जर्रा हर मखलूक वही करने के लिए तैयार, वो दरिया उसके हुक्म से बह रहा था, हुक्म रब्बी हुआ होगा, मूसा के लिए रास्ता छोड़ दे, रास्ता बन गया, आप उसमें से गुजर गए आराम से, और जब आप गुजरे अब पीछे से फिरौन पहुंचा घोड़ा दौड़ाता हुआ अपने लश्कर देखा, इसने देखा कि मूसा गुजर रहे, एक मिनट के लिए रुका, मैं कैसे जाऊंगा ये गुजर रहे हैं, फिर ख्याल आया जब ये जा सकते हैं तो मैं भी जा सकता हूं, नबी को अपनी तरह समझा, यही भूल थी, नबी को अपनी तरह समझा, जब ये गुजर सकते हैं तो मैं भी गुजर सकता हूं, यही तो लोग आज कह रहे हैं कि वो हमारी तरह है, वो करते हैं हम भी कर सकते थे, वो चलते थे हम भी चलते, वो फिरते थे हम भी फिरते हैं, यही सबसे बड़ी भूल थी, सारे मौजजात देख चुका था मगर फिर भी अपने को नबी की तरह समझा, नबी को अपनी तरह समझा, जब मूसा गुजर सकते हैं तो मैं भी गुजर सकता हूं, अपना घोड़ा भी डाल दिया, और जब ये बिल्कुल वहां दरमियान में पहुंचा, हुक्म रब्बी हुआ दरिया को कि मिल जाओ, रास्ते खत्म हो गए, दरिया मिल गया, और फिरौन अपनी फौज के साथ उसमें गर्क हो गया, ये अंजाम हुआ खुदाई का दावा करने वाले, ये अंजाम हुआ गुरूर और तकब्बुर करने वाले, ये अंजाम हुआ अपने इख्तदार और अपने इख्तियार पर नाज करने वाले का, ये अंजाम हुआ अपने आप को सुपर पावर समझने वाले का, मेरा ईमान ये कहता है, मेरा यकान और विद्वान ये कहता है कि उस वक्त के फिरौन को अल्लाह ने पानी में गर्क कर दिया है, उस वक्त की सुपर पावर को पानी में गर्क कर दिया, इंशाअल्लाह इस दौर की सुपर पावर को भी पानी में गर्क कर दे, एक हल्की सी झलक तो दिखाई अल्लाह ने, तूफान भेजा ना, सैंडी तूफान आया, सुपर पावर नहीं, अफगानिस्तान में, लीबिया में, इराक में मजलूम मुसलमानों पर वहशियाना बमबारी की, मजलूम मुसलमानों को बेदर्दी के साथ शहीद किया, उनकी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, उनकी इज्जत और असमत को लूटा, उनकी दौलत को लूटा और तेल की दौलत को आज भी लूट रहे हैं, लेकिन यही सुपर पावर जो अफगानिस्तान में, लीबिया में, इराक में, जिसने ईंट से ईंट बजा दी और कोई उसे कुछ ना कह सका, अल्लाह के अजाब के सामने, तूफान के सामने बेबस है, कुछ नहीं कर सका, कहां है उनकी वो तैयारा शिकन तोपें, कहां है उनके वो असलहा, वो उनकी इफरादी कुव्वत, वो उनके एटम बम, क्या कोई एटम बम इस तूफान सैंडी तूफान को रोक सका, नहीं रोक सका। वाशिंगटन के मेयर ने यह बयान दिया कि अब बहुत देर हो चुकी है, हम कुछ नहीं कर सकते, पांच पांच फीट ऊंची या छह छह फीट ऊंची जो लहरें आ रही हैं, हम इनको नहीं रोक सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने दिखा दिया, देखो वो तो इज्जु मन तशा वो तो जिल्लु मन तशा बियदिकल खैर, इज्जत और जिल्लत ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में। इन्ना बत्या रब्बी का लशदीद, तुम्हारे रब की पकड़ मजबूत है। तुमने नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, माज़ल्ला उनके खाके बनाए, कुरान को तुमने मुकदमा चलाकर कुरान को जलाया, अल्लाह के कलाम को जलाया। तुमने नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, इंतहा करते हुए फिल्म बना दी। कब तक अजाब नहीं आएगा, कब तक अजाब नाजिल नहीं होगा? अरे अभी तो ये हल्की सी झलक अल्लाह ने दिखाई है कि दुनिया की सुपर पावर, तमाम तर ताकत होने के बावजूद अल्लाह के एक तूफान को नहीं रोक सकी। इन अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दिया। देख लो कितनी ही साइंसी इजादात कर लो, कितने ही एटम बम बना लो, अपनी हिफाजत के कितने ही तरीके कर लो, एक मामूली सैलाब आ जाए तुम उसको नहीं रोक सकते। और ये जान लो कि सुपर पावर अगर कोई है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है, उसके अलावा कोई नहीं है, सिर्फ अल्लाह की जात। अब देख रहे हैं, जहां कभी लाइट नहीं जाती थी, 15 दिन तक लाइट नहीं है। हम तो आदि हैं ना, हम तो आदि हैं, कराची वाले तो बेचारे 2 घंटे सुबह तक, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे शाम, यही है ना, और कभी तो 24 घंटे ही। हम तो आदि हैं। वो जो 1 मिनट लाइट के बगैर नहीं रह सकते थे, 15 दिन से लाइट नहीं, और लाइट नहीं तो गैस भी नहीं। स्टेशनों पर गैस लेने के लिए लाइन लगी हुई, और सर्दी शुरू हो गई, गैस नहीं तो हीटर नहीं चल रहा है। देखो अल्लाह का आजाब, देखो अल्लाह की शान, उसकी कुदरत देखो। तमाम तर चीजें होने के बावजूद कोई चीज काम नहीं कर रही। वो बता रहा है कि देखो अब भी ना खोश के नाखून ले लो, अब भी मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी से रुक जाओ। हम ये समझते हैं कि ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने अदना सी झलक दिखाई है, अगर वो जब्बार और कहार पूरी गैज़ो गज़ब में आ जाए तो सुपर पावर का नामो निशान मिट जाए। रोक सके वो इसको? तमाम तर ताकत होने के बावजूद खड़े रहकर देखते रहे, तूफान शहर में दाखिल हो गया, कितनी बिल्डिंगें तबाह हो गईं, बिजली का निजाम दरम बरम हो गया, अंडरग्राउंड जो रेलवे चलती थी वो सारा निजाम दरम बरम हो गया, 1 अरब से जायद अफराद बेघर हो गए, कहीं आग लग गई, कहीं कुछ हो गया। लेकिन यह हल्की सी झलक है, और अब भी अगर वो बचे हैं तो हम समझते हैं उन्हीं मुसलमानों की वजह से बचे हैं जो वहां मौजूद हैं, जो वहां पर रह रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहे हैं, अब भी उनकी वजह से बचे। सुपर पावर को चाहिए कि होश के नाखून ले ले, मजलूम मुसलमानों को बेदर्दी से उनके शहरों पर, उनके मुल्कों पर बमबारी करने से रुक जाए। तुमने अपने आप को ठेकेदार समझ लिया कि जिस मुल्क पे चाहा बमबारी कर दी, जिसको चाहा खत्म कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। अगर इतने ही सुपर पावर हो तो अल्लाह से टक्कर लेकर बताओ। कुरान को जला दिया तो टक्कर तो वैसे ही तुमने अल्लाह से ले ली, एक सोचने की बात है। कुरान पर मुकदमा चल रहा है, कुरान को माजल्ला सजा दी जा रही है, और फिर कुरान को जलाया जा रहा है। अगर कोई आदमी कोई किताब लिखता है और वो किताब गलत हो तो आप किताब को सजा देते हैं या लिखने वाले को? लिखने वाले को देते हैं ना, जो उसका मुसन्निफ है, ऑथर है, उसको सजा दी जाएगी। किताब खुद ब खुद तो नहीं लिखी जाती। अब बताओ कुरान किसने लिखा? कुरान किसका कलाम है? किसी इंसान का नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहु अम्मन वालों का कलाम। और कुरान ने बबांगे दहल ये दावा कर दिया था, ये चैलेंज दे दिया था, वा इन कुंतुम फी रैब मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली। ये कलाम जो हमने अपने बंदे खास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, अगर तुम कहते हो बशर का कलाम है तो इसकी मिसल एक सूरत ले आओ, और अल्लाह के सिवा अपने तमाम लोगों को अपने साथ मिला लो। अगर तुम सच्चे हो, कुरान का चैलेंज उस वक्त से है, आज भी है और कयामत तक, एक सूरत क्या एक आयत तक नहीं ला सके। तो जब कुरान से इल्मी मुकाबला नहीं कर सके, कुरान के दलाइल और बराहिन का जवाब ना दे सके, तो ऊंचे हथकंडे इख्तियार किए और कुरान को उठाकर जला दिया। कुरान को जलाना इस बात की दलील है कि इन्होंने मुसलमानों से टक्कर नहीं ली है, इन्होंने डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन से टक्कर ली, इसलिए कि उसके कलाम को जलाया है। उसी का कहर, उसी का गजब इन पर यह नाजिल हुआ। पता यह चला कि अल्लाह तबारक व ताला अपने कलाम मुकद्दस में यह बता रहा है कि देखो, फअरसलना अलैहिम तूफाना वल जराद वल कुम्बला वद्दफादिया वद्दम आयात मुफस्सलात, हमने तूफान भेजा, टिड्डी दल के बादल, मेंढक, खून और ये तमाम निशानियां, ये सब अजाब हम भेज चुके हैं। फस्तकबरू, उन्होंने तकबर किया, वकानु कौमम मुजरिमीन, और वो थे ही मुजरिम कौमों में से। ये पहले हो चुका है और अब भी हो सकता है। अल्लाह का अजाब जब भी आए कोई उसे रोकने वाला नहीं है। ये तो तूफान है, और अगर जलजला आ जाए तब तूफान में तो ये एक चीज है कि जब आ रहा है तो आपने देख लिया कि इतनी तेजी के साथ आ रहा है, बता दिया तूफान आ रहा है, लेकिन जलजला आने का तो कोई बता ही नहीं सकता। जमीन फटती है और बड़ी से बड़ी इमारतें उसके अंदर चली जाती, हजारों लाखों करोड़ों इंसान जमीन के अंदर। जब जलजला आकर चला जाता है फिर ये अपनी साइंसी आलात से देखते हैं, हाँ इतने रिएक्टर स्केल से, इतनी रफ्तार से आया था, आने से पहले नहीं बताए। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दिया, देखो साइंस कितनी तरक्की कर ली, तुम अपनी हिफाजत के लिए कितने आलात, कितने एटम बम, कितने असलहे, कितनी चीजें तैयार कर लो, मगर याद रखो जब खुदा का कहर नाजिल होगा तो ना ये टैंक तुम्हें बचा सकते हैं, ना ये असलहा तुम्हें बचा सकता है, ना एटम बम बचा सकता है। अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ अल्लाह की जात है जो बचा सकती। एक झटका दिया और बता दिया। तो अगर अब भी ये होश के नाखून ले ले और अपने आप को संभाल ले तो बच सकते हैं, वरना खुदा का कहर जब नाजिल होगा तो दुनिया की कोई ताकत बचाने वाली नहीं है। मौजूदा दौर में अपने आप को सुपर पावर कहने वाली ताकत, इससे पहले भी बहुत थे जो अपने आप को सुपर पावर कहते। फिरौन ने भी कहा था मेरी सबसे बड़ी ताकत है, नमरूद ने भी कहा था मेरी सबसे बड़ी ताकत है, कारून ने भी कहा था मेरी सबसे बड़ी ताकत है, यजीद ने भी कहा था मेरी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन जब खुदा का कहर नाजिल हुआ मिनटों सेकंडों में खत्म कर दिया। अब्राहा अपना लश्कर लेकर बैतुल्लाह को ढाने के लिए आया, और क्या ताकत के नशे में बदमस्त, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मेरे हाथी टकरे मार के बैतुल्लाह को गिरा देंगे माजल्ला। और इसने क्या किया, जब वहां तक आया और किसी ने इसको रोका नहीं तो हजरते अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट वहां चल रहे थे, उनको पकड़ लिया। जाहिर है ऊंट लेने तो यो आएंगे, ऊंटों को पकड़ लिया। खादिम ने आके इत्तला दी, सरदारे मक्का अब्राहा जो लश्कर लेकर आया है उसने आपके चरते हुए ऊंट पकड़ लिए हैं। फरमाया अच्छा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फौरन अब्राहा के पास, उसको पता चला कि सरदारे मक्का आ रहे हैं, उसने इज्जत के साथ बिठाया, एहतराम किया, कैसे आए? फरमाया भाई हमारे ऊंट चल रहे थे, तुमने पकड़ लिया। बड़ा हैरान हुआ, अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें अपनी ऊंटों की तो फिक्र है और उस बैतुल्लाह की फिक्र नहीं जिसकी तुम जिसके तुम मुजाबिर हो, जिसकी रखवाली कर रहे हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया ऊंट मेरे हैं, मैं उनकी फिक्र करता हूं, बैतुल्लाह जिसका है वह खुद फिक्र करेगा। ऊंट मेरे हैं मैं फिक्र कर रहा हूं, बैतुल्लाह जो है वह अल्लाह का घर है वह खुद फिक्र करेगा। करेगा फिक्र अपने घर की जो इस घर का मालिक है, कि जो इस घर का मालिक है वो बहरों बर का मालिक है।
क्या
कि जो इस घर का मालिक है वो बहरों बर का मालिक है। मुझे क्या फिक्र है, ऊंट मेरे हैं इसलिए मैं आ गया, काबा जिसका घर है वो खुद फिक्र करेगा। उसने कहा अच्छा इनके ऊंट इन्हें वापस कर दो। सिपाहियों ने ऊंट छोड़ दिए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ऊंट पकड़ कर ले आए, लेकिन एक दुआ कर दी, मौला ये तेरा घर है तो खुद हिफाजत कर ले, हम हिफाजत नहीं कर सकते, इतना बड़ा लश्कर हाथियों का हम नहीं मुकाबला कर सकते। बस अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहु व मनवालहु को जलाल आया। और जब ये इसने आगे बढ़ने की कोशिश की, कुरान उठाकर देखिए, कुरान कहता है अलम तर कैफा फअला रब्बुका बि अस्हाबिल फील। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, क्या उनके दाव को गलत नहीं कर दिया? वअरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और एक छोटे परिंदे अबाबील आसमान से नाजिल किए झुंड के झुंड, और वो अपने साथ कोई पत्थर लेकर नहीं आए थे, कोई बंदूक असलाह लेकर नहीं आए थे, एक छोटी सी कंकरी लेकर आए, छोटी सी। उस लश्कर पर आए, उनकी चोच में कंकरी थी, उसको गिरा दिया। जो हाथी पर सवार था, अगर उसके सर पर गिरी, जिस्म से पार होकर हाथी के जिस्म में, और उससे पार होकर जमीन में दाखिल हो गए। कुरान कहता है फजा आला हम का असफिम माकूल, हमने कर दिया उनको ऐसा जैसा कि खाया हुआ भूसा। कहां गया वो लश्कर, कहां गया वो अब्राहा, कहां गया उसका गुरूर तकबुर नखवत, मिनटों सेकंडों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खाक में मिला दिया। पता चला कि सुपर पावर अगर है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है, उससे बढ़कर पूरी दुनिया में किसी की ताकत नहीं है। इसीलिए हम उसकी बारगाह में झुकते हैं, उससे पनाह मांगते हैं, उसके गजब से डरते हैं, और उसकी बारगाह में ये दुआ करते हैं मौला कि ये आज का फिरौन, आज की ये सुपर पावर जो अपने आप को सब कुछ समझ रही है और तेरे नबी की शान में गुस्ताखियां कर रही है, मौला तूने झलक दिखाई है, अपना अजाब नाजिल कर दे ताकि ये सफाए हस्ती से मिटा कर इसको रख दिया जाए। इंशाअल्लाह ऐसा होगा। मुसलमानों को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर आजजी और इंकिसारी इख्तियार करें, अपनी पेशानियों को उसकी बारगाह में झुकाते रहें, उसकी इबादत उसकी बंदगी करते रहें, और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में रखें, उनकी इताअत और फरमाबरदारी करते रहें। इसी में निजात है, इसी में फला है, इसी में कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहु व मनवालहु हम सबको सरकार की मोहब्बत में जिंदा रखे और उन्हीं की मोहब्बत में मौत अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।